रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। अवैध कह कही तुम दो वरदानों की बात कह रही हो, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे अब ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भा हे ले लो। गरजे अति बरसे ना जो बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर दो में है। अरे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान मांगना चाहती हो मांगो। रानी ने कहा अच्छा महाराज एक बात सुन लो, ऐसे नहीं मांगेंगे। पहले आप कसम खा जाइए अपने बेटे राम की, तब हमें विश्वास होगा कि हम जो मांगेंगे आप हमको देंगे जरूर। बेचारे भोले दशरथ को क्या मालूम कि आज कैकई हमसे क्या मांगने जा रही है। कसम खा गए, ठीक है मैं अपने पुत्र राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुमको दूंगा। रानी बोली ठीक है, ये है शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये खाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो किए ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो विचलित सत से मत होना। महाराज पहला वरदान हमें आपसे ये मांगना है कि सुना हूं प्राण प्रिय अरे भावत जी का, कि देहु एक वर भरत ही टीका। महाराज पहला वरदान ये चाहिए कि राज राम को नहीं, राज मेरे बेटे भरत को मिलना चाहिए। दुख हुआ दशरथ को, मगर कोई खास नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अरे हमने कहा भी था राम को नहीं भरत को राजगद्दी दे देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बेटा राम बड़ा आज्ञाकारी है, समझा दूंगा मान जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय कैकई ने दूसरा वरदान मांगा तो एक मिनट के लिए दशरथ जैसा त्यागी पुरुष भी धराशाही हो गया। क्या मांगा कैकई ने दूसरा वरदान, दशरथ का जीवन ही मांग लिया। राजा जो राम अरे हो रहा है,
वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो,
अरे दूसरा वरदान क्या मांगा कि महाराज हमारी बात आप ध्यान देकर सुन ले कि जो राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं उनकी जगह भरत बैठेंगे और तपस्वियों का भेष धारण करके राम जो है वो 14 वर्षों के लिए वनवास जाएंगे। कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, सुना ओह शब्द ये थे नहीं थे जहरीले बाण किया जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण।
आज जिस समय सुना श्रोता बंधुओं उस सीधे साधे राजा का हाल क्या है,
उस सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई सिर थामा दोनों हाथों से, मूर्छित होने को आए थे सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया, सोचा ये फल है कर्मों का अबला से अनुचित नहीं हुआ, यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ, प्रकाश रूपणी है नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तीर नहीं भर सकती है,
दशरथ रो रो कर कहते हैं कह कैसे, अरे रानी तेरे हृदय में ये भाव कैसे आ गया कि मेरे लिए राम और भरत अलग अलग हैं, मैं भगवान शंकर की कसम खा के कहता हूं कह कई
कि मोरे राम भरत दुई आखी, मोरे सत्य कहाऊं करी शंकर साखी।
अरे रानी सुन, जो तूने पहला वरदान मांगा है वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये दूसरा वरदान मांगकर दशरथ के प्राणों को क्यों उससे जुदा कर रही है?
रानी ले राज भरत जी को, रानी ले राज भरत जी को, पर क्रूर और व्यवहार न कर। है राम गऊ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाम पढ़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी हो कर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बुरी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा।
अरे मेरा राम मेरे सामने रहने दे कैकई, आज मेरे राम को मुझसे जुदा मत कर। लेकिन भैया वास्तव में जो घटना घटने वाली होती है वो घटती जरूर है, आज इन बातों से कोई दया नहीं आई कैकेयी के हृदय में। अरे बोली महाराज, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? अरे अगर नहीं वरदान दे सकते हो तो साफ मना कर दो, हम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते। अरे हमें बार बार फुसला क्यों रहे हो? कह दो हम अपना वचन त्याग रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कोसल राज, अरे बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। बस बस रानी बस, चुप हो जा वो नीच बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। तो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे, काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे पर हम वचन नहीं जाने देंगे। ममता तू गरक हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतान है क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। कर सुन रानी, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी हम अपने प्राण दे सकते हैं मगर सत्य अपना कभी नहीं छोड़ सकते। अरे जान जाएगी मगर शान नहीं जाएगी,
जान जाएगी मगर शान नहीं जाएगी,
जान जाएगी मगर आन नहीं जाएगी,
जान जाएगी मगर आन नहीं
जाएगी,
जान जाएगी मगर आन नहीं जाएगी,
सर जाएगा मगर तान नहीं जाएगी,
सर जाएगा मगर तान नहीं जाएगी, सर जाएगा मगर तान नहीं जाएगी।
चाहे इस देह की खाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे इस देह की खाल के हो टुकड़े टुकड़े,
देह की हो खाल के टुकड़े टुकड़े,
हड्डियाँ चूर हो और बाल के टुकड़े टुकड़े,
हड्डियाँ चूर हो और बाल के टुकड़े टुकड़े,
चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े,
हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े,
पेट भरने के लिए छाछ के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने के लिए म्याच के टुकड़े टुकड़े, मगर सब तो जाएगा मगर तान नहीं जाएगी,
सब
तो जाएगा मगर तान नहीं जाएगी, जान जाएगी मगर आन नहीं जाएगी। आज इतना कहकर महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। भैया उधर ये संदेशा पूरी अयोध्या में पहुंच गया। जिस वक्त राम को पता चलता है, उनको एक खबर मिलती है कि हमारे पिता इसलिए मूर्छित हो गए हैं, तो बिचारे आए और कहने लगे कि हे तात, आप चिंतित क्यों होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं, पिता तो आज बेचारे कह भी नहीं सकते हैं, आज बता भी नहीं सकते हैं कि बेटा राम मैं ये चाहता हूं कि तुम वनवास चले जाओ। बंधुओ, अरे विधि का विधान देखो, क्या बेचारे राम क्या दशरथ जानते थे कि आज जो राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं कल वो मातम में बदल जाएंगी। क्या प्रभु राम को यह पता था कि हमें वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन विधि का विधान तो बड़ा अजीब होता है। वशिष्ठ महाराज ने कितना शोध करके लगन रखी है, लेकिन दोस्तों विधि के विधान के आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले, आका काशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता, आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता, फागुन सावन हो जाता है, सावन फागुन होता, कहीं दिवाली कहीं दिवाली कहीं दिवाली, विधि के हैं सब खेल निराले, कहीं फूल मा लाए बटुकी, कहीं बर्छिया हैं तो चलती, जन्मोत सौ हो रहा कहीं पर, कहीं चिताएं हैं अब जलती, नाच रहे इस हिम्मत वाले, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले, सब खेल निराले,
आज इधर प्रभु वनवासी भेष धारण करके और बन जाने की भैया तैयारी कर रहे हैं, वनवासियों जैसा भेष धारण कर लिया, और उधर देखिए जिस समय सीता ने सुना कि हमारे प्रभु वनवास जा रहे हैं तो मन में विचार किया कि जब मेरे स्वामी ही वनवास जा रहे हैं तो मैं यहां रहकर के क्या करूंगी। प्रभु राम जब जानकी के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रिये देखो ऐसा है मैं वनवास जा रहा हूं। जानकी जी कहने लगी, स्वामी जब आप वन को जा रहे हैं तो मैं यहां पर रह करके क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रभु कहने लगे, अरे जानकी कैसी बात करती हो, तुमने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा है, तुमने कभी कांटों का रूप नहीं देखा है, और तुम वन में कहां जाओगी, संसार में वन में रहने के अच्छा होता है, बड़ा दुख होता है वन के अंदर। जानकी ने तुरंत जवाब दिया,
कि नाथ कभी आपने एक चीज सोची है, संसार में पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख कौन सा है?
मैं मानू दीख समुझी मन माही, मैं मानु दीख समुझी मनु माही, योग सम दुख जग माही। मुझी मन माही, मैं मन दीखो ये वियोग सम दुख जग माही, ये वियोग सम बिनु देहा नदी बिनु बारी, तैसै नाथ पुरुष बिनु नाही, बन देवी बन देवा उदारा, बन देवी बन करी है सासु ससुर समसारा, पाए पखारी बैठी तरु छाही, पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हुआ यू मुझी कर मन माही।
अरे स्वामी, शायद आपको भी ये मालूम है कि नारी के लिए सबसे बड़ा दुख कौन है? पति का वियोग। बिना पति के पत्नी कैसे है कि जिए बिनु देह, अरे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना आत्मा के शरीर और बिना जल के मछली का जीवन है, नाथ उसी प्रकार से बिना पति के पत्नी का जीवन है।